तरह व्यवहार कर रहा है, क्या दिखाता कुछ और है, मन में कुछ और रहता है और करता कुछ और है। तो इसी तरह भगवान के साथ हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। एक टाइम हम एक दूसरे को, जीव एक दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान हृदय में परमात्मा रूप में रहने के कारण वो धोखा नहीं दे सकते, हम उनको धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अगर कोई सही में भक्ति करना चाहता है तो उसे प्रामाणिक सिंसियर रहना चाहिए कि जिससे वो गुरु को प्राप्त कर सकते। भक्ति में, भक्ति करने का मतलब क्या है कि हम स्वयं स्वतंत्र रहकर भक्ति नहीं कर सकते, हमें मार्गदर्शन दिखाने वाला कोई तो चाहिए कि वो है एकमात्र गुरु। और हम जब तक प्रामाणिक नहीं रहेंगे और भगवान को पूरी तरह शरणागत नहीं रहेंगे, गुरु हमें प्राप्त नहीं होंगे। भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की ही कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। अभी भगवान की कृपा से गुरु कैसे मिलते हैं? जब तक हम हमारी प्रामाणिक इच्छा, हमारी शरणागत भगवान के प्रति हम नहीं दिखाएंगे, तब तक भगवान गुरु के पास, गुरु हमारे पास भेजते नहीं। और गुरु की कृपा से भगवान कैसे मिलते हैं? जिस तरह अगर गुरु ने हमें जो दिया, उपदेश दिया, जो बताया है कि जीवन में ऐसे इस तरह करना चाहिए, ये बात करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे डूज एंड डोंट, मतलब ये कार्य करो, ये मत करो, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के पास, भगवान से मिला नहीं सकते गुरु हमें। एक सच्चे गुरु की खोज में हम स्वयं नहीं उन्हें खोज सकते कि हम जाएंगे कहां भी और एक गुरु को ढूंढ लेंगे। गुरु तो मिल जाएंगे दुनिया में बहुत, लेकिन एक प्रामाणिक जो परंपरा से आए गुरु वो हमें नहीं मिल सकते। इससे कैसे रहेगा कि आजकल हम देखते हैं कि लोगों को फैशन लग गया कि गुरु को स्वीकार करना, उनके साथ स्वीकार करना एक फैशन हो गया। लोग गुरु का स्वीकार क्यों करते हैं? कि कहते हैं कि हाँ हमारे पास गुरु है। जिस तरह का कोई घर में एक कोई पालतू जीव को पाल लेता है ना, तो उसी तरह आजकल लोग क्या करते हैं कि गुरु को अपने, गुरु को स्वीकार करना मतलब उनको लगता है कि हाँ हमारे पास गुरु है। कि और गुरु भी कैसे रहता है कि पता है ये शिष्य बंधु है, मूर्ख है, इसे जो भी कुछ कहूंगा ये ऐसे ही करेगा, क्योंकि इसे ज्ञान नहीं है पूरी तरह। क्योंकि ये इस तरह ऐसा क्यों हो जाता है, लोग इसके कारण इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सही गुरु परंपरा से आए, सही गुरु नहीं मिलता, ना मिलने के कारण वो ऐसे बोंधू गुरु के शरणागत हो जाते हैं कि जो कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा जेब भरते रहो, मेरी जेब भरते रहो और तुम्हें जो करना जीवन में करो। इससे क्या होता है कि लोग अभी कहते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसा लोगों को बताने जाते हैं, कुछ उपदेश देने जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि नहीं हमें पता है, हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमारे पास गुरु हमें सब कुछ बताते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सही गुरु कौन है और सही उसकी किस तरह उनके शरणागत जाके किस तरह उनसे उपदेश लेना चाहिए। तो इस तरह हमें एक सही गुरु पाने के लिए, फैशन की तौर पे नहीं, एक सही गुरु पाने के लिए हमें एक प्रामाणिकता, प्रामाणिक होना चाहिए, एक सिंसियर रहना चाहिए हमें, तभी हमें भगवान हमारे पास गुरु भेजेंगे। और उस सही गुरु पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति मतलब एक भक्त प्रभुपाद के पास आता है, तो प्रभुपाद से कहता है कि प्रभुपाद, प्रभुपाद हमें भगवान की प्राप्ति किस तरह हो सकती? प्रभुपाद ने कहा सिर्फ इच्छा करो तभी तुम्हें भगवत धाम जा सकते, भगवान की प्राप्ति हो सकती। तो इसी तरह हमें एक प्रामाणिक इच्छा करनी पड़ेगी कि हमें गुरु चाहिए। तो उसके लिए प्रामाणिक इच्छा करने के लिए क्या, ऐसे नहीं कि हम बैठ गए एक जगह और प्रामाणिक मैं इच्छा, प्रामाणिक इच्छा कर रहा हूं कि मुझे गुरु मिले, नहीं, उसे दिखाना पड़ेगा, उसे प्रयत्न करना पड़ेगा कि वो प्रामाणिक इच्छा कर रहा है कि हाँ इसे सही में गुरु की जरूरत है। तो अगर हम बैठे बैठे बोलेंगे सिर्फ गुरु, जैसे अभी काम है, बैठे बैठे बोलेंगे गुरु मुझे चाहिए, मुझे गुरु, ऐसे जप करते रहेंगे, जपते रहेंगे कि गुरु मुझे चाहिए चाहिए, इस तरह नहीं, तो उसे गुरु की खोज में हमें निकलना पड़ेगा। अभी गुरु कहां मिलेंगे? मंदिर में आएंगे और गुरु के ऐसे भक्तों के संग में जाएंगे जिन्हें पता है कि सही गुरु, प्रमाणिक गुरु, परंपरा से आए हुए गुरु कौन है। तो इसलिए हमें उसे जाना पड़ेगा, तो गुरु की प्राप्ति तभी होगी। तो अभी गुरु की प्राप्ति करने के लिए हमें मंदिर में आना पड़ेगा, तो ऐसे मंदिर में तो सभी को ही लगा आते हैं, तो मंदिर में आने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ आने के बाद सीधा हमें नहीं, डायरेक्ट वो दरवाजे से अंदर घुसे, भगवान के दर्शन लिए और सीधा बाहर निकल गए। उस तरह गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले भक्तों से मिलना चाहिए, जिस तरह कहते हैं कि मंदिर में आने के बाद प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद फिर प्रभुपाद को प्रणाम करके फिर भगवान के पास जाना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम ये दिखाएंगे, अगर इसी तरह भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त लोग हमें क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि सही गुरु क्या है, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो उसके लिए हमें तरफ से उत्साह किस तरह दिखाना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि उसे लालयित होना चाहिए, कि उसके उसे भक्तों से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा इधर जन्म क्यों हुआ है, मुझे इतनी तकलीफ परेशानी क्यों होती है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। जब तक ये प्रश्न जीवों के या कोई जीवों के मन में नहीं आते, तब तक वो चाहे मंदिर में कितनी बार भी आए, कुछ भी कर ले, भक्तों के संग में ही रह जाए, फिर भी उसे कुछ फायदा नहीं लाभ होने वाला। तब तक इसका उदाहरण कैसे होता है, एक उदाहरण ध्रुव महाराज की कथा। जब ध्रुव महाराज देखते कि हम 5 साल के बच्चा है एक छोटा, उसे अपने पिता की गोद में बैठना था, लेकिन क्या हो गया कि जैसे पिता की गोद में बैठने गए तो सुमिति उनकी सौतली माँ, उन्होंने तुरंत पिता की गोद से हटा दिया, कहा कि अगर तूने पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़े। तो यहां तक ये रोते रोते ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति, जो उनकी माता थी, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पिताजी के गोद में बैठना है, तो लेकिन मेरी माताजी मना करती हैं। तो उस वक्त सुनीति ने कहा, क्या जो उनकी माता थी, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाने के बाद ही तुम्हें पिता के भगवान मिल सकते हैं, और वही तुम्हें बताएंगे कि पिता के गोद में, वो एकदम ये बताएंगे तुम्हें सही तरह कि किस तरह तुम्हें प्राप्ति हो सकती है। तो उसके बाद ध्रुव महाराज, अभी देखिए 5 साल का बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा है, उसका दृढ़ता कितनी है देखिए उसमें। तो ये उसने ये नहीं सोचा कि अभी माँ ने कहा है कि जंगल की तरफ जाओ, उधर तुम्हें भगवान मिलेगा। अभी छोटा बच्चा, हमारे जैसे लोग रहते बड़े हुए, आलस से इतना करते हैं कि कुछ भी कहा जाए ऐसे करने के लिए दृढ़ तो छोड़िए, कुछ जो सीधी तरह करने नहीं, मन माने बहाने करने लगते हैं। तो इस तरह दृढ़ रहना चाहिए हमें ध्रुव महाराज की तरह कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी, किसी भी तरह मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो ये इच्छा हमें हमारे हृदय में रखनी चाहिए कि दृढ़ रहना चाहिए कि मुझे गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है। तो ये देखकर भगवान मदद करते हैं कि हाँ, ये जीव के हृदय में प्रामाणिक इच्छा है, दृढ़ता है इसमें कि इसे गुरु की प्राप्ति चाहिए, भगवान चाहिए। तो उस वक्त ध्रुव महाराज की दृढ़ता देख के गुरु भेजा, एक नारद मुनि भेजे, तो जिससे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सही मार्गदर्शन बताया कि हाँ, ये तरीका है, तुम जाओ और तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है गुरु के जरिए। अगर हम ये, अगर कोई हमें आके कहता है कि नहीं, तुम फिक्र क्यों करते हो, भगवान के पास क्यों जाते हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी है वो मैं उसे दूर करूंगा, तो हमें ये समझना चाहिए, उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये भ्रम्य है, ये व्यक्ति भ्रम्य है। जो कहता ना मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इनके पास जाने की क्या जरूरत, उनके पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तेरी तकलीफ परेशानी करता, तो समझिए वो व्यक्ति को, स्वयं को समझना चाहिए कि वो भ्रम्य है, कि क्यों व्यक्ति स्वयं की खुद की मदद नहीं कर सकता तो दूसरों की मदद क्या करेगा। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। और जैसे देखते हैं कि अगर जैसे मार्केट में कोई ओरिजिनल चीज आती है तो उसके साथ डुप्लीकेट भी चीज आ जाती है, उसी तरह अगर जैसे इस दुनिया में प्रामाणिक गुरु है तो भोंदू गुरु भी इस दुनिया में आ जाएंगे। तो इसी तरह और लोगों को यह भी, ऐसे भोंदू गुरु क्या करते हैं, तो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जो भी तकलीफ परेशानियों दूर करूंगा, झूठ बोलते हैं उन्हें भ्रम में डालते हैं और उन्हें गलत राह दिखाते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति जो सही रास्ते में जाना चाहता है लेकिन उसे सही मार्गदर्शन मिलने नहीं न मिलने के कारण वो भटकता रहता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति हमें गुरु से मिला सकता है, वो कौन है? वो है भगवान। जिस तरह हम देखते हैं कि गुरु भगवान की मदद से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की मदद से हमें भगवान मिलते हैं। गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें जो भी भगवान की शरण में मत जाओ, मैं तुम्हारी जो भी तकलीफ दूर करूंगा। नहीं, गुरु इसके लिए हमारी शरण में आने कहता है। गुरु जब भी कहता कि गुरु के शरण में आने का मतलब क्या है कि भगवान के उपदेशों का पालन करना। गुरु के उपदेश पालन करना मतलब भगवान के उपदेशों का पालन करना। जो भी भगवान गुरु के उपदेशन का पालन करता है तो भगवान के शरण में जाने के बराबर। तो इसलिए हम देखते हैं गुरु अपने आप को भगवान कभी नहीं मानता, वो सिर्फ भगवान का दास अपने मानता। तो इसलिए गुरु जीव और भगवान के एक मध्यस्थ है। जिस तरह एक पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से पत्र लेकर जैसे वो जिसका पत्र उसको दे देता है, उसी तरह गुरु का कार्य। जीव और भगवान के बीच में गुरु कार्य करता है। गुरु क्या करता है कि हाँ, इस जीव को उठाता, उसे उपदेश देता, अगर गुरु शिष्य ने उसे पालन किया तो भगवान के पास भेज देता। यही गुरु का कार्य है। लेकिन इसमें कैसे, शिष्य को प्रामाणिक रहना चाहिए जिससे कि वो हर अपने गुरु के उपदेशों का पालन कर सके। पालन करने के कारण ही गुरु अपने शिष्य को भगवान की तरफ भेज सकता है। लेकिन अगर हम गुरु के उपदेशों का ठीक से पालन नहीं करेंगे और फिर बाद में पूरी तरह शरणागत नहीं रहेंगे, तो अगर गुरु जो भी हमारे कहेंगे, जो भी उपदेश हमें देंगे, तो उसे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उपदेश कितने भी सही हो, अगर हम भगवान के शरणागत नहीं रहेंगे और वो नहीं ठीक तरह उनका पालन करेंगे, तो उस उपदेशों का हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए प्रामाणिक शिष्य होना भी जरूरी है, ठीक, जिससे कि अगर सच्ची भावना हमारे हृदय में है भगवान को पाने की, तो उसके हमें क्या, भगवान गुरु रूप में एक व्यक्ति को हमारे पास भेजते हैं, जिससे क्या होगा कि हम भगवान के पास जा सके। तो इसी तरह देखा जाता है कि भगवान की कृपा ही से हमें गुरु मिलते हैं और दूसरा कोई भी हमें गुरु दिला नहीं सकता। जिस तरह अगर एक उदाहरण पे देखा जाए कि अगर आईना, एक आईना है और आईने पे धूल जमी है, तो व्यक्ति अपना चेहरा उसमें नहीं दे सकता। उसी तरह भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, लेकिन ये भौतिक काम इच्छाओं के कारण हम भगवान को देख नहीं सक पाते। जबकि जिस तरह एक उदाहरण दिया गया, एक पेड़ के अंदर एक तोता और एक जीव बैठा है, दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन जीव ने क्या किया, अपना चेहरा पोपट से, मतलब तोते से मोड़ लिया। उसी तरह कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब जब तक हमारे हृदय का हम स्वच्छ नहीं कर लेते, भौतिक इच्छाएं काम इच्छों का हम दूर नहीं कर लेते, तब तक हम भगवान को, परमात्मा जो हमारे हृदय में वास है, उसको नहीं देख सकते। और जिससे अगर परमात्मा को हम नहीं दे सकते, तो उनके वो बताओ ये उपदेश जो हमारे आते हैं, हमें मिलते हैं, तो हम उसे कैसे स्वीकार कर पाएंगे, तो कैसे समझ पाएंगे। देखा जाता है कि कभी आपने कभी अनुभव किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा, वो आपके ऊपर है। कि देखिए, जब भी हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो दो आवाजें हमेशा आती हैं। कि पहली आवाज कहती है, हृदय से दो आवाज हमेशा करती है, जो परमात्मा हमें बताते रहते हैं, कि पहली आवाज ये कहेगी कि ये कार्य करो मत, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारी भक्ति के लिए कार्य अच्छा नहीं है, ये कार्य करो मत। और दूसरी आवाज क्या कहती है, नहीं करो, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, कल किसने कह दिया, बगू नंतर बगू, काय होइल नंतर ते बगू हमन, ये दूसरी आवाज हमेशा कहती है। इसलिए हमेशा जो पहली आवाज रहती है वो है भगवान की रहती है, परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ये कार्य गलत है, इस कार्य को मत करो। और दूसरी आवाज जो रहती है वो हमारी काम इच्छाएं, जो हमारे हृदय में जो काम इच्छाएं हैं वो हमेशा कहती है कि ये कार्य मत करो, इस तरह मत करो। इसी तरह एक जो सिंसियर भक्त रहता है, जो प्रामाणिक भक्त रहता है, वो हमेशा हृदय से आने वाली पहली आवाज को ही सुनता है और उसके मुताबिक कार्य करता है। ये ऐसे देखने में ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे इतने जन्मों और इतने कर्मों, हमारे जो कर्मों के कारण हम पहली आवाज को ठीक से सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले जन्मों के हमारे हृदय में जो उसके असर है, उसका छाप पड़ा हुआ है जो हमारे हृदय में, तो उसके कारण हमें पहली आवाज हमें ठीक से सुनाई नहीं देती, हमेशा हमें दूसरी आवाज सुनाती। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है, इस भौतिक दुनिया में आया है, उसका स्वभाव है कि इंद्रिय तृप्ति करना। तो अभी आप किसी को भी उसके अच्छे भले के लिए अगर उसको बोलेंगे कि भाई ये मत कार्य कर, इससे अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तो वो व्यक्ति कभी सुनेगा नहीं। जो भौतिक दुनिया में फंसा है और इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह फंसा है, वो कभी नहीं सुनेगा एक अच्छे व्यक्ति की सही बात, नहीं सुनेगा। वो बोलेगा देखेंगे बाद में क्या होता है, और जब बाद में तकलीफ परेशानी में आता है तो क्या बोलता है उस वक्त, अगर अच्छा हो गया, मैंने अगर तुम्हारी बात मान ली रहती तो उससे मैं ये तकलीफ परेशानी से दूर हो जाता। इसीलिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक होना चाहिए, भक्त को प्रामाणिक रहने चाहिए। लोग आजकल लोग क्या चोरी चकारी बुरे काम भी प्रामाणिकता से करते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी कुछ ऐसे हैं जो प्रामाणिकता से अच्छे काम भी नहीं करते, वो हमेशा अच्छे काम को भी बुरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमेशा सुनीते, इसलिए सुनीति जो ध्रुव महाराज की माता थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, भगवान के पास क्या जाने की जरूरत है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह भगवान पिता की गोद में बैठना है। जैसे हम आज के उपदेश देखते रहे कि कुछ कुछ माँ बाप लोग ऐसे रहते हैं कि वो ये कार्य कर वो ये अच्छा नहीं, मतलब उनको गलत, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे ऐसे भेजते हैं, मतलब गलत कार्य करने के लिए करते हैं, जिससे बच्चा क्या बचपन से वैसे ही कार्य सीखते रहता है और बड़े होकर वैसे ही करने लगता है। उसी तरह लेकिन ध्रुव महाराज की माता सुनीति, उन्होंने क्या कहा, एक प्रामाणिक गुरु होने के नाते, एक गुरु का मतलब रोल निभाते हुए उन्होंने क्या कहा, भगवान का आपको भगवान की प्राप्ति आपको जंगल की तरफ जाने से, जो ऋषि मुनि जाते हैं भगवान की प्राप्ति करते हैं, उधर ही मिलेगी। तो इसी तरह अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें ध्रुव महाराज की तरह दृढ़ रहना पड़ेगा। अगर ध्रुव महाराज की तरह दृढ़ नहीं रहे तो चाहे आप कोई भी आश्रम में रहो, चाहे मंदिर में रहो या किधर भी रहो, कितनी भी भक्ति कर लो, आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ता हमें चाहिए ही भक्ति में, नहीं तो अगर ढीले हो जाएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं। उससे हम भक्ति में हजारों साल बिताएंगे, मतलब हजारों जन्म बिताएंगे, लेकिन उसका भौतिक लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ उसका मिलने वाला नहीं। भक्ति में आने के बाद, भक्ति मतलब मंदिर में आने के बाद हमें उसके पुण्य कार्य कर्म तो मिलते हैं, लेकिन उसका भौतिक लाभ होता है। अगर सही में पुण्य कार्य करने हैं, जो भक्तिमय पुण्य कार्य रहते हैं उसे लेने हैं, उसे प्राप्त करने हैं, तो हमें प्रामाणिक रहना पड़ेगा। जैसे भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे प्रामाणिकता से मेरी पूजा अर्चना या जो भी मेरा चिंतन करते रहता हमेशा, मैं उसके सामने हाजिर होता हूं। तो इसका उदाहरण प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज किस तरह, उन्होंने भगवान को पुकारा नहीं कभी, या अम्बरीश महाराज ने विपत्ति आने पर उन्होंने भगवान को पुकारा नहीं कि हे भगवान आओ मेरी रक्षा करो। प्रहलाद महाराज ने भी, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उन्हें बहुत तकलीफ परेशानी दी, उन्होंने कभी भगवान को पुकारा नहीं, सिर्फ उनका नाम जपते रहे तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसी तरह अगर भक्त, ये जो प्रहलाद महाराज अम्बरीश महाराज है, ये बहुत हाई लेवल मतलब एकदम शुद्ध भक्त, तो 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन ये लोग कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, लेकिन साधक होने के नाते हमारे लेवल पे हमें भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। हमें यही भगवान से मांगना चाहिए कि हमें किस तरह भक्ति में मैं प्रगति करूं, किसी भी स्थिति में हूं, कैसे भी हूं, आप मुझे स्वीकार करें। तो ऐसे जो ऐसे भक्त रहते हैं, ऐसे बहुत कम भक्त रहते हैं जो भगवान से मांगते हैं लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए मांगते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं।